الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. معذرت کہ یہ لیپ ٹاپ میں پرابلم ہو گئی اور یہ ویڈیو وغیرہ کھل نہیں رہا تھا. یام ولادت حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نزدیک ہیں اور جو ہے یہ بہت سب سے بڑی عید ہے مومنین کی. اسی مولا کی ولادت سے گزشتہ درس اگر یاد ہوگا بہت ساری چیزیں جو ہیں شروع ہوتی ہیں, یعنی اہل ولایت, اہل کرامت, اہل عرفان حضرات جو ہیں ان کا سال جو شروع ہوتا ہے وہ امام پاک کی ولادت سے شروع ہوتا ہے. اور بہت سارے کام اگر آپ بھی 15 شعبان سے شروع کریں, یہ بہت عملی نسخہ ہے, کوئی بھی کام تو وہ شب قدر کے نزدیک جا کے 40 دن بنیں گے. تو یہ 40 جو ہے سب سے زیادہ پاورفل 40 ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیں, کیونکہ ہر دن کی اپنی خصوصیت ہے, اس کی برکات ہیں. اور شب جمعہ کی جو خصوصیت ہے وہ اور راتوں میں نہیں ہے. جمعے کے دن زیارت امام زمانہ کا دن ہے, زیادہ امکانات ہوتے ہیں. عید کے جو دن ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ بہت اہم ترین تاریخ آنے والی ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. بہت سارے جو مشکلات ہیں آپ کے, یہاں جو آپ کے مقاصد ہیں, گولس ہیں, اس کے لیے 40 نکالیں, 40 یہ 40 دن بس زیارت عاشورہ, زیارت وارث ہر دن فجر کے بعد پڑھیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھیں. یہ ایک عمل ہے, اس کا 40 ہو گیا, ختمہ ہو جاتا ہے, وہ مقصد میں کامیابی ہو جائے گی. یا اسی طرح سے ایک لمبا سجدہ جو ہے توبہ کے لیے, استغفار کے لیے, ول پاور کو بڑھانے کے لیے, کامیابی کے لیے. سجدہ جو ہے سب سے افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ کے قلب نزدیک انسان آتا ہے, فوکس زیادہ ہوتا ہے, توجہ زیادہ ہوتی ہے. مثلاً 40 نکالیں کہ وہ گناہ جو رکاوٹ ہے امام زمانہ کی زیارت میں, خدا ان کو معاف کرے, بہترین 40 ہے. یعنی انسان کی معراج ہے اس پر کہ غیبت کبریٰ میں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے, تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. زیارت کا مقصد یہ ہے کہ امام کو جب دیکھیں تو آپ پوچھ سکیں گے کہ مولا آپ مجھ سے راضی ہیں, میری زندگی سے, میرے کریکٹر, میرے مال سے یا نہیں. تو اگر امام راضی ہیں تو خدا راضی ہے, اور اگر امام راضی نہیں, خدا راضی نہیں, تو زندگی ایک بار ملتی, بار بار نہیں ملتی. مرنے کے بعد اگر مقام یقین پہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں. زندگی میں ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے اسے پتہ چلے کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں, کیونکہ دنیا داری میں ہم غرق ہیں, ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ڈالر کے پیچھے, آسائش کے پیچھے, آرام کے, لذتوں کے پیچھے اندھے مدہوش ہو چکے ہیں ہم لوگ. تو فکر ہی نہیں کہ بھائی قبر میں کیا ہونا ہے, برزخ میں کیا ہونا ہے. یہ جو معصومین نے فرمایا 10 لاکھ سال برزخ میں رہیں گے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. زندگی جس کا کل کا پتہ نہیں, اس کے لیے شب و روز ہم محنت کر رہے ہیں, آخرت کے لیے بالکل 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار. غفلت, غفلت جہنم میں جانے کا سبب غفلت. تو معلوم کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. قرآن کے مجید میں آیت ہے, عجیب آیت, کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک اعمال کر رہے ہیں, کیونکہ 100% ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے, مجلس کرتے ہیں ریاکاری کے لیے, شہرت کے لیے, دنیا کے لیے. ریا ہو شرک, کلن ریا پورے کا پورا شرک. تو یہ بہت بڑے گناہ گار کو تو پتا ہے نا میں گناہ گار ہوں, تو وہ توبہ بھی کر لے گا. ایسا جو انسان نادان ہے, ظاہر عبادت کر رہا ہے مگر اس کا باطن جو ہے وہ شرک سے آلودہ ہے, نفاق سے آلودہ ہے, مسجد بنا رہا ہے اپنے نام و نمود کے لیے, سیاست کے لیے, شہرت کے لیے, اقتدار کے لیے. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتی. इमाम पाक से मुलाकात का मकसद यह है कि इमाम से पूछें कि मौला हम कहाँ जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं शैतान, और अगर हम उसे आप नाराज हैं तो किन गुनाहों की वजह से, किन अहमाल की वजह से। तो ये बहुत बड़ी सआदत है कि जिंदगी में एक मरतबा इंसान इमाम पाक की जियारत करें। अच्छा, वो भी अरबईन निकालना पड़ता है, इमाम की जियारत के अरबईन हजरत आयतुल्ला बहरुल उलूम ने निकाले थे। अब बहरुल उलूम के तीन बहुत बड़े मकासद थे और वो उसमें कामयाब हो गए। बहरुल उलूम बहुत अजीम शान इंसान थे, बहुत अजीम। उनका जिंदगी का मकसद था कि इमाम जमाना से जागते हुए ज्यारत हो, ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो, और अल्लाह पाक मुझे करबला का एक मंजर दिखाए ताकि मैं खुद को टेस्ट कर सकूं कि भाई करबला में अगर मैं होता तो मौला हुसैन का साथ देता या भूख प्यास तलवारों के बारिश के वजह से मौला का साथ छोड़ देता। ये भी जरूरी है अपना ईमान टेस्ट करना। वो कहते एक बेचारा हमारी तरह कमजोर मोमिन था, वो ज्यारत आशूरा पढ़ता था, वो ये ला या उसमें जुमला है ना, या अल्लाह इतनी कुन तुमा कुन अफूज मा कुन, काश मैं करबला में होता, काश मैं करबला में होता, मौला मैं आप पे कुर्बान हो जाता। हर रोज पढ़ता था। तो ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया करबला का मंजर हुसैन, देखा मौला हुसैन ने कहा कि देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये जालिम मुझे नमाज ही पढ़ने देंगे तीरों की बारिश के, तुम जरा तीर रोक लो। कहा मौला हाँ बिल्कुल मेरी तमन्ना, हर रोज दुआ मांगता हूँ काश मैं करबला के शहादा में शरीक हो जाऊँ, आज आपने मौका दिया। खड़ा हो गया सीना तान के, और उधर से जब लरसता हुआ तीर आया तो इससे अपनी जात की मोहब्बत ज्यादा थी, मौला हुसैन से मोहब्बत कम थी। देखिए बहुत अहम है अपनी जात की मोहब्बत को खत्म करना। जब तक अपनी जात की मोहब्बत को खत्म न करें हमारा कोई अमल खालिस नहीं है, सब अपनी जात के लिए, क्योंकि जान की मोहब्बत जात की मोहब्बत ज्यादा थी, हट गया डर गया और वो तीर जाके मौला हुसैन को लगा। बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा कि मैं तो हर वक्त दुआ मांगता था काश मैं करबला में होता, आज मैंने क्या गुनाह किया कि मौला मेरी वजह से जख्मी हो गए, कोई और सहाबी आता जो जरूरतमंद होता। फिर दोबारा हिम्मत की, मगर वही हुब्बे ज़ात खत्म न करे तो इंसान क्या हिम्मत करेगा। सबसे बड़ी हिम्मत इंसान की कि हुब्बे ज़ात को हुब्बे खुदा और हुब्बे अहल बैत में खत्म कर दे, फना कर दे अपनी ज़ात की मोहब्बत, तभी ईमान मुकम्मल होता है। लेकिन जो सजदा है हर नमाज का सजदा हमें फना सिखाता है कि ये सर मेरे अल्लाह हाजिर है, मेरा हाजिर है, ये मेरा सजद, मैंने सर जो सजदे में रखा है तेरी राह में कबूल हो, मैं सर कटाने के लिए हाजिर हूँ, ये मकसद है सजदे का। तो बहरहाल दोबारा भी वही हुआ कि वो अपनी जात की मोहब्बत में गर्क था, हट गया मौला हुसैन, तीन मरतबा ख्वाब से बेदार हुए। हाँ बहुत रोया, बहुत रोया कि मुझे हुब्बे ज़ात को खत्म करना है, हुब्बे ज़ात अगर खत्म नहीं की तो इबादत फिर हमने क्या की। हुब्बे ज़ात की खत्म करने का तरीका यही है कि आप अपने अंदर सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा करें। एक दिन में तो खत्म नहीं होती, सबसे आखिर जो गलीज तरीन पर्दा खुदा और बंदे के दरमियान है वो हुब्बे ज़ात का है। गुनाहों के पर्दे हट गए, दूसरे पर्दे हट गए, हुब्बे दुनिया का भी हट गया, दुनिया की मोहब्बत भी निकल गई, आखिर में जो पर्दा हटता है वो है हुब्बे ज़ात। बहुत मेहनत की जरूरत हुब्बे ज़ात, यानी रोजाना अब आपके ममालिक में तो गरीब भी नहीं है कि अच्छा खाना बनाओ जो आपको पसंद है, खुद ना खाओ फकीर को खिलाओ, फिर आप वही काम अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकते। कुछ लोग तो इस कदर बखील होते हैं कि अच्छा खाना छुपा देते हैं मेहमान को, दूसरा खिलाते हैं, अच्छा अपने लिए रख देते हैं, खुद बात ही नहीं जा सकते। इसकी दलील है, इंसान लन तनाल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, फिर इन चीज जो है ना वो अल्लाह की राह में दे, मेहमान हो, फकीर हो, रिश्तेदार हो, अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं वो गरीब को दे दें, हर काम सेक्रीफाइस, जिस कदर ज्यादा होगी वो बेजात कम होगी। तो वो बेजात जब खत्म होगी तभी इंसान इस काबिल होगा। तो हजरत आयतुल्ला बाहरुल उलूम ने वजीफा निकाला, उनकी किताब में लिखा हुआ था कि मैं मुवाफिक हूँ, मगर 1 अरबईन में शायद एक दो चीजें मिली, फिर दूसरे अरबईन में दूसरी चीज मिली। अरबईन वही है, ठीक, अरबईन क्या निकाला उन्होंने, अब वो तो माशाल्लाह वली खुदा थे, गुनाह उसके नहीं थे, हम जैसे इंसान अगर अरबईन निकाले तो पहला मरहला गुनाहों को हटाना है जो वाजिब है, फिर हो गए मुस्तहवा, वो तो वाजिब अदा कर चुके हैं, तो वह मुकम्मल कर चुके हैं। आम इंसान के लिए जो भी अरबईन निकाले, पहली चीज क्या है, तौबा, कि आंखों के गुनाह, जबान के गुनाह, हाथों के गुनाह, कानों के गुनाह, पेट के गुनाह, कदमों के गुनाह, ऐजा निकाह के गुनाह, सारे गुनाह को इंसान एक मरतबा याद कर सजदे में कहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन व अंता अरहमुर राहिमीन, मेरे अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं खताकार हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, तू अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, मेरे गुनाह को बख्श, गुनाह को याद करके गिरिए की कोशिश कर, रोने की कोशिश कर। अब ये पहले मरहले में जैसे बताया कि 110 मरतबा, फिर 400 मरतबा, फिर 700 मरतबा, फिर 1001 मरतबा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी इस्तेमाल बढ़ेगी। कम से कम ऐसे उलमा कहते हैं अगर फायदा लेना तो 20 दकीके होना चाहिए इस जिक्र, मगर शुरू में शायद मुश्किल हो, अगर थक जाए तो आप सर उठा लेते। ये वो जिक्र है जिससे इंसान गुनाहों से भी आजाद होता है और बुरी सिफात से भी आजाद होता है, और आलम गैब तक जो पहुंचना है, खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आलम गैब में, तो बेहतरीन अमल ये सजदा है, बेहतरीन अमल। तो कम से कम 1 अरबईन, या बल्कि उलमा का 1 साल ही अमल करे तो इंसान को परवरदिगार ऐसी चीज अता फरमाता है जिसका वो तस्वुर नहीं कर सकता था। और दूसरा रोजा, अभी रोजे का महीना है बल्कि शाबान रजब, ये 3 महीने जो रोजे, अरबईन भी ये है कि 40 दिन रोजे में रहे, 30 दिन वो और 15 से शुरू करें तो 25 तक 40वां हो जाएगा, 25 रमजान तक। रोजा अजीब इबादत है, अजीब इबादत है, असौम ली, अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोजा खालिस इबादत है जो मेरे लिए, वो बुतों को सजदा भी लोग करते थे, अल्लाह को भी सजदा करते, बुतों की इबादत करते, मगर किसी कौम ने, किसी अपने झूठे खुदा के लिए रोजा नहीं रखा है, रोजा खालिस अल्लाह के। और इससे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, रोजे का बातें बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह रमजान में अगर तौफीक दिया, टाइम मिला तो अर्ज करेंगे। तो रोजे के बहुत असर आता है, हेल्थ वाइज भी, कैंसर को खुद सबसे खतरनाक अगर बीमारी है, पहला काम है तो बॉडी में कैंसर सेल मरना शुरू होते हैं, और मायना भी रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा। अच्छा, तौबा के बाद क्या करना है कि हम इमाम ज़माना की ज़ियारत करें, अस्माए परवरदिगार, अस्माल हुसना, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या सूरह हशर में आखिर में अस्माल हुसना है। एक इस्म का हजरत आयतुल्ला बहर उलूम जो है वो खत्मा निकालते थे। अब एक इस्म का खत्मा जो है एक वली खुदा के लिए अलग है, एक मुझ जैसे गुनाहगार के लिए अलग है, क्योंकि हमारे और खुदा के दरमियान हिजाब है, हम दुनियादार लोग हैं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो बड़ी बात हो गई, सारा दिन गाफिल रहते हैं। औलिया खुदा एक लम्हे के लिए जिक्र खुदा से गाफिल नहीं रहते, इसलिए दुआ भी उनकी मुस्तजाब जल्द हो जाती है। मसलन अगर मौला अली एक मरतबा कहें या अल्लाह इस्मे आजम है, मगर उनके शागिर्द को मसलन 200 मरतबा या अल्लाह करना पड़ेगा, फिर उनकी शागिर्द की शागिर्द या मसलन हम तो फिर पता नहीं कहाँ है, बहुत पीछे। जैसे फर्क होता है, खुद आयतुल्लाह जो थे वो 110 मरतबा जिक्र कर देते अल्लाह के असमा का, मैं एक दिन अल्लाह का इस्म ले लिया, दूसरे दिन दूसरा अल्लाह का इस्म ले लिया, तीसरे तीसरा अल्लाह के असमा के हुक्म निकाला, 40 अल्लाह के असमा, असमा और हुस्न अल्लाह के नाना नाम और खुसूसन जो कुरान करीम में मौजूद है। और जाहिर किस्म नमाज इमाम ज़माना अलैहि सलातो वसलाम पढ़ना बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। और सोने से पहले आये नूर, सूरे नूर में अल्लाह नूर समावात से आये नूर, उसके भी बहुत मौजजात है आये नूर के, वो 14 मरतबा पढ़ के सो जाते थे, ठीक है ना। और रोजा भी साथ, मतलब 15 शाबान से इसरार लिया रोजे का, तो तवस्सुल, तवस्सुल में जियारत भी आप ले सकते हैं, दुआ तवस्सुल ले सकते हैं, जियारत आशूरा ले सकते हैं। और याद इमाम में जो है, क्योंकि इमाम ज़माना से मिलना चाहते हैं, अस्सलाम अलैकुम या साहिब ज़मान, अस्सलाम, यानी दिन भर कल्ब दिल इमाम की तरफ हो, और इसमें अपनी ज़बान में कह सकते हैं अदरकनी मौला, अदरकनी या इलाही अज़मल बला जो दुआ, अदरकनी मौला मदद करें, मैं 40 निकालूँ, आप भी ज़्यादा चाहते। तो देखिए कि परवरदिगार ने उन्हें कामयाबी दी और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो मायूसी हमारे यहाँ तो कुफर से बड़ा गुना है, मायूस नहीं होना है कि भाई मैं गुनाहगार हूँ, मैं ज़ियारत नहीं कर सकता। ही नहीं, खुदा का अजीब करम होता है, अजीब। एक आबिद था जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, और एक गुनाहगार डाकू था, लुटेरा था, लूटता था कश्तियों को। एक कश्ती गर्क हो गई, उस पर देखा एक खूबसूरत औरत है सर, उसको पकड़ के ले आया, सालिम था, लुटेरा था। जब गुनाह का इरादा किया और देखा वो औरत जो थर थर कांप रही है, तुम क्यों कांप रही है, तुम गुनाह कर रहे हो, मुझे गुनाह पे मजबूर कर, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस उसका जमीर जिंदा था, मर चुका था तो लुटेरा, मगर कोई चीज एक सिफत इंसान को कभी बचा ले। खुद पे लानत की, यार गुनाह मैं कर रहा हूँ, डर हो रही है, मैं कितना हैवान बन चुका हूँ। औरत को बहन बनाया, उसको माफ किया, उसको कैसे बिठा के रवाना किया, और आके आबिद से कहा मुझे तौबा सिखाओ, मैं बड़ा गुनाहगार। बहुत तौबा की, बहुत बहुत देरिया की। अब दोनों ने कहा वो ईद का वक्त आने वाला, चलो वतन चलते हैं, शहर चलते हैं। शदीद गर्मी थी, दोनों पैदल चले। आबिद ने कहा भाई दुआ करो कि बादल आ जाए, सफर अच्छा गुजरे, मतलब बहुत गर्मी है, बहुत तकलीफ है। इस डाकू ने कहा मैं एक राहजन आदमी, एक डाकू, एक बदबख्त, मैं किसी लायक हूं, मैं दुआ मेरी अल्लाह कबूल करे। आबिद ने ठीक है मैं दुआ मांगता, तू आमीन का। आबिद ने दुआ मांगी, ये डाकू लुटेरा जालिम, इसने आमीन का ही बादल आ गए। ये बेचारा गुमान नहीं करता था कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल करेगा, मैं एक रहजन आदमी, मैं एक बदमाश आदमी, मगर अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा है हम सोच नहीं सकते। अब दोनों का रास्ता अलग होने लगा, आबिद को इधर जाना था, इनको इधर जाना था, लेफ्ट में जाना था, राइट में जाना था। तो अब देखा वो जो बादल का टुकड़ा है वो आबिद के सर पे नहीं गया, ये डाकू बदमाश जिसने तौबा की उसके सर पे आ। ये एक दूसरा मोहब्बत का ताजियाना खुदा ने मारा, रोते रोते सजदे में गिर पड़ा। मुझे तेरी मारिफत न थी, तू कितना रहीम है, तू कितना करी। तो ये नहीं कि आयतुल्लाह बहरुल उलूम को ज्यादात होगी और आपको नहीं होगी। हाँ ये बात तो असल में कुफर से बदतर है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कितना भी गुनाहगार कोशिश करनी चाहिए। वो खुद आयतुल्लाह बहरुल उलूम के जो 3 मका, 1 अरबईन में नहीं, दूसरा अरबईन निकाला उन्होंने, तीसरा अरबईन मकासिद में कामयाबी। तो यही है कि इमाम की विलादत से अरबईन लेकिन शुरू करें, नीयत हो कि मौला की जियारत हो, मौला से पूछे मौला हमसे राजी हैं। देखिए इमाम पाक के जुहूर के लिए जो हमें कोशिश करनी चाहिए ना, वो है आमादगी। पहले खुद को तो आमादा करें, फिर दूसरों के। आयतुल्ला थे वो भी ईरान के, उनका ख्वाब बड़ा मशहूर हुआ, कई जाकरों ने उलमा ने पढ़ा। वो ख्वाब में देखते हैं ना कि इमाम जमाना आते हैं, कोई शख्स देखता है इमाम जमाना, कहता तो मैं तुम्हारे इमाम हूँ, तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ, थोड़ा आराम करना। अब उसके घर में जना वो गंदी फिल्में भी थी, वीडियोस भी थे, वो भी थे। कमोला जरा 10 मिनट मुझे इजाज़त, में जरा घर सफाई कर दे। 10 मिनट के बाद जब उसने देखा तो देखा इमाम जो है वो रोते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिसका दरवाजा खटखटाता हूँ, कोई तो 5 मिनट जरा इंतजार करें, कोई 10 मिनट इंतजार करें, कोई भी मुझे घर में नहीं बुलाता। आखिर मजलूमियत आज हमारे घर इस काबिल है, हजारों ऐसी चीजें हैं जो इमाम को पसंद नहीं है, लाखों की पेंटिंग लगी हुई है, कितनी रियाकारी है, हर चीज में रियाकारी। तो कहने का मकसद ये है कि हम खुद को आमादा करें, हम खुद को पहले आमादा करें, घर वालों को आमादा करें, फिर शहर वालों को आमादा करें। देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत इस्लामी भी बन गई है, मगर जो एक बुजुर्ग आलिम ने कहा था कि देखो भाई आप एक शहर ऐसा बना दो जो पूरी दुनिया के लिए नमूना हो, इसमें माशाल्लाह करोड़ों शिया है दुनिया में, मगर आप एक शहर हमने नहीं बनाया, कैसे? एक ऐसा शहर बनाओ जिसमें चोरी ना होती हो, जिसमें डाके ना होते हो, जिसमें झगड़े ना होते हो, जिसमें हसद ना होता हो, जिसमें बुग्ज़ कीना ना होता। एक शहर बनाओ दुनिया में मॉडल के तौर पर, जैसे वो आप देख अमेरिका में वो हम गए थे एक शहर उन्होंने बनाया कि भाई हर चीजें जो हाथ से करते हैं उसमें कोई मशीन चीजें, लोग उन्हें देखने जाते हैं, एक दुनिया की चीज। तो अगर आप एक मॉडल के तौर पर एक शहर बनाओ दुनिया में जिसमें न चोरी है, न डाका है, न नफरत है, न मार धाड़ है, न रिश्वत है, न बेईमानी, लोग इस तरह से रह रहे हैं जिस तरह से इमाम जमाना के शहर में रहते हैं। एक बुजुर्ग हस्ती गुजरने वाली खुदा थे आयतुल्लाह फख्र, वो इमाम जमाना के उस शहर में गए थे, चाहे इमाम की औलाद है हजारों में, उन्होंने कहा ऐसा शहर और ऐसा सुकून उस मस्जिद में जो नमाज मैंने पढ़ी जिंदगी में, मैंने ऐसी नमाज जो नुकता अहम था उन्होंने, तक वहां तो कोई गुनाह करते ही नहीं है मिसाली, और दुनिया में ऐसा शहर होना चाहिए। और दूसरी ये कि इमाम की मुदीरियत यानी जो मैनेजमेंट इमाम जमाना की ऐसी है कि ऐसा इक्तसादी निजाम है इमाम का कि लोग जो है ज्यादातर उनका वक्त जो इबादत में गुजरता है, रोटी के पीछे उन्हें फिक्र ही नहीं है। वो कैसे बोले, दुनिया भर के मेवे जो है ना वो हर गली कूचे में लगे फ्री में, हर तरह के मेवे, भूख लगी हम मेवा खा ले, हवस तो दुनिया की है ही नहीं उन्हें कि हम आखिरत के लिए, ना लिल्लाह में ना यहाँ दुनिया के लिए नहीं। तो अगर हम दुनिया को मुसलमान बनाना चाहते हैं इमाम के, पहले हम खुद बदलें। एक शहर तो बना के दिखाए हम, मतलब एक शहर बना के दिखाए, 50 50 हजार शहर आदमी का, चलो शहर बना के दिखाए 5 लाख आदमी, देखो भाई ये नमूना है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं, यहाँ कोई फितना नहीं, ये सब आशिकान है इमाम जमाना। तो ये आलिम कहते हैं फिर आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया आएगी और इस मॉडल की कॉपी करेगी। अब जनाब मोमिन है, शिया है, बहू सास का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, जमीन पे झगड़ा है, सोने पे झगड़ा है, वही जो काफर करते हैं वो सारी आदतें हमारे अंदर है। डाकू भी हैं, चोर भी हैं, रिश्वत भी हैं, बल्कि बास गुनाह तो जो काफर नहीं करते हैं वो जनाब हुकूमत की गलत कार्यों की जब मुसलमानों में ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसमें शरीक होना चाहे, एक शहर मशहद और कुम्भ में बनाने का एक ख्वाब है, एक आइडियल है कि बेस शहर बने, पूरी दुनिया के मोमिन आए और ये शहर दुनिया का हर आदमी हर मुल्क का इसमें आके रहे और वो नमूना हो, अपने मुल्क को दिखा दे, देखो ऐसा मॉडल है, देखो इसमें कितना सुकून है, जन्नत दुनिया में बहश बना के दिखा, तो खुद ब खुद लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद इस्लाम पे अमल नहीं करते तो दूसरों को क्या मुसलमान बनाएंगे। ठीक है ना, लिहाजा हमारा हाल वही है, एक लतीफा है, हकीकत है, एक डाकू ने बेचारे काफिर को पकड़ लिया, बंदूक उसके सीने पे रखी, का कलमा मुसलमान हो जा, का ठीक है मुसलमान हो जाता हूँ, कैसे हो जाऊँ, का कलमा पढ़, कलमा मुझे आता नहीं, तुम पढ़ा, तेरी किस्मत अच्छी है, मुझे भी कलमा नहीं आता। तो हम खुद अमल नहीं करते तो दूसरों को क्या अमल कराएंगे। भाई इतने करोड़ दुनिया में लोग हैं, 500 मिलियन शिया दुनिया में, क्या हम एक शहर नहीं बना सकते मॉडल के तौर पे कि पूरी दुनिया के देखे ये हैं आशिकाने मामे जमाने, भाइयों की तरह रहते हैं, बहश की तरह रहते हैं, जैसे इस्लाम ने बतलाया वैसे रहते। बस आखिरी उसूल बता दिया जाए इसमें, वैसे एक क्लिप में ये हमने पूरा नुस्खा बताया है इमाम के, अगर आपको चाहिए तो पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं जो शायद बयान नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह आप रुजू कीजिएगा, जब हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज उनको हम वो क्लिप भेज देंगे कि ये अभी से आप शुरू करें। बहुत सारे पहले भी हमने बताया था, ये 15 शाबान बहुत अहम, 15 से लेके शबा कदर तक ये बहुत कीमती वक्त है, इसको जाया दुनियादारी में न करें, 40 दिन में ऐसा काम करें जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती, तकदीर को बदल सकती, बहुत चेंजेस ला सकते। इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए, शैतान के वसूस से बचें और इन अहमाल में कामयाब। अगर कुछ सवाल है तो आप इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट है आपके पास, आप इंशाल्लाह सवालात कर सकते हैं।
किबला अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह।
किबला, मैंने इमामे जमाना की सीरत पढ़ते हुए ये पढ़ा है कि मौला जो है ना रोजाना जो है ना 30 लोगों से मिलते हैं, तो इस हवाले से आपकी कुछ स्टडी वगैरह हो तो थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर दें।
जी हाँ, देखिए इमाम की जो जियारत का दरवाजा खुला हुआ है, बस ये है कि जो काम अंबिया जाहिर में कर रहे थे इमाम जो है वही काम गैब में रह के, अगर हमारे अंदर तकवा होगी, सलाहियत होगी, तो मौला की जियारत होगी। ठीक है, और इसमें कोई वो भी शर्त नहीं है कि आप आलिम हो गैर आलिम हो, सिर्फ तकवा चाहिए, गुनाहों से आजादी चाहिए, तो बेशक जो है इमाम मिलते हैं। बहुत सारे लोग पहचानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहचानते, बाद में पता चलता है। तो क्योंकि जाहिरन मना भी किया गया है कि अगर आप इसमें गुरूर ना आ जाए, तकबर ना आ जाए, मगर ये कि जहाँ पर शक शुबा हो लोगों के दिलों में, वहां जो है फिर इजाजत है। जिस आलिम का मैंने जिक्र किया बहरुल उलूम, हाँ ये बेचारे भी इसी तरह से इमाम जमाना की जियारत की वजह से ही मशहूर हुए थे। ये तो उस जमाने में नजब में उलमा में दो ग्रुप बन गए थे, जैसे हम कोरोना की वजह से भी शियों में या खुद ईरान में दो ग्रुप हो गए, बाज जो है वो सजदे का नहीं रखते, पत्थर रखते हैं सजदे का से। वो गलत किस्म के लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया है कि वो आपको वायरस लग सकता है। तो अभी हालांकि इस मॉडर्न जमाने में वो इस्लामी मुल्क में बाज वो पत्थर पे करते हैं, बाज कहते हैं खा के शिफा है, बीमारी में भी शिफा है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडाएं होती रहती हैं गलत किस्म की। तो नजफ में दो ग्रुप हो गए थे, एक उलमा कहते थे कि नहीं गैबत कुबरा में इमाम की जियारत नहीं हो सकती है। उसकी वजह वो आखिरी खत था, उसको समझा नहीं गया था कि इमाम ने फरमाया कि हम गैबत कुबरा में जा रहे हैं, इसके बाद अगर कोई कहे कि मैं इमाम से मिलता हूँ और आपका खुम्स ले जाता हूँ और उनके इमाम की रसीद लाता हूँ तो वो झूठ बोलता है। यानी इमाम ने ये कहा कि मेरा नायब खास कोई नहीं है कि आप उसको कहें कि भाई इमाम का खत मेरा ले जाए, इमाम से जवाब लेकर। मगर उसको जो है वो गलत समझा गया, प्रोपेगेंडा की गई बहरहाल ये कि भाई इमाम की मुलाकात नहीं हो सकती। तो आगा बहरुल रूम ने अरबईन निकाला और कई रियादतें की कि इमाम से मैं पूछूं कि मौला ये क्या मसला है। तो इमाम की गालिबन इमाम हुसैन के हरम या मौला अली के हरम में इमाम जमाना की जियारत हुई। इमाम ने उसे बुलाया मेरे अपने नजदीक, और नजदीक वो एहतराम मंदू का और नजदीक का इमाम ने गले से लगाया, सीने से लगाया। उसके बाद कहा कि मौला मेरी जियारत तो आपकी हो गई, लेकिन लोग तो आधे उलमा तो कहते हैं जियारत हो ही नहीं सकती, कोई मानेगा नहीं, कोई ऐसी निशानी देंगे सब मान। तो इमाम ने हाथ उठा के कहा कि परवरदिगार इस मेरे बेटे के सीने को इल्म का समुंदर बना दे, क्योंकि बहरुल उलूम जो थे इमाम की मुलाकात से पहले सबसे वो जहनी तौर पर कुंद तालिब इल्म थे। यानी एक मसला जो दर्श समझ रहे एक मरतबा नहीं दो तीन मरतबा फिर कोई और उसे समझाता था, वो मशहूर था, कुंद जहन तरीन मुखलिस थे, मोमिन थे, मगर हाफजा उसका नहीं था, कुंद थे। अब इन्होंने आगे ऐलान किया कि मौला की जियारत मुझे हो गई है और पे निशानी है कि जो भी सवाल आप करें। तो लोग दीगर उलूम के सवालात कर रहे थे जो उन्हें जानते भी नहीं थे, पढ़ा भी उनका, तो लोगों को यकीन हो गया उसके बाद कि इमाम की जियारत हो सकती। जो लोग कोशिश करते हैं इमाम उन्हें अपनी जियारत कराते हैं, तादाद 30 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मगर जो आशिक हैं जो इमाम के इश्क को अहमियत देते हैं बेशक उनकी जियारत होती है। जी दूसरा सवाल।
जी मिसेज इफ्तिखार रफत रिजवी।
आगर साहब सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
आगर साहब आपसे दुआ की दरख्वास्त है, हम एक दुआ करते हैं, रफत रिजवी बोल रहे हैं आपके शागिर्द, हम एक दुआ करते हैं परवरदिगार से कि परवरदिगार मेरे मौला इमाम जमाने की हिफाजत फरमा, उनके जहूर में ताजील फरमा, और हमें कंबर बना के मौला की ज्यारत करा दे, और मौला के किसी नाइब के पास हमें भिजवा दे ताकि हम तरबियत हासिल कर सकें मौला के लश्कर में शामिल होने के लिए। ये मेरी एक आगा साहब दुआ मैं बहुत गिड़गिड़ा के करता हूँ परवरदिगार से। आप आपसे भी दरख्वास्त है, मेरे लिए इस दुआ में आमीन भी कहिए और मेरे लिए
इलाही
दुआ ज़रूर कीजिएगा आप, जैसे परवरदिगार मेरी ये दुआ ज़रूर पूरी करें।
हमें इलाही। देखिए गैबत कुबरा में सबसे बड़ी इबादत जो है ना वो इमाम जमाना के जुहूर की दुआ है, क्योंकि इसमें सारी दुआएं आ गई। जब इमाम का जुहूर होगा जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा, जब इमाम का जुहूर होगा मजलूम को उसका हक मिल जाएगा, जब इमाम का जुहूर होगा दुनिया से फसाद खत्म हो जाएगा। यानी तमाम बुराइयों को आप मिटाने की दुआ मांग रहे हैं और तमाम नेकियों को आने की दुआएं मांग रहे हैं और खुद मवद्दत कुर्बा जो है वो अदा कर रहे हैं। तो खुद इमाम की हिफाजत खुद हमारी हिफाजत होगी, जो हम पढ़ते हैं कि इमाम की हिफाजत वो खुद हमारी हिफाजत का सबब होगा। और अगर कोई वाकई सच्चे दिल से दुआ मांग रहा है ना, तो फरमाया कि ऐसे आशिकों को जब भी इमाम का जुहूर होगा कब्र से जिंदा किया जाएगा और वो इमाम के असहाब में शामिल, करबला के असहाब के लेवल के बराबर है वो लोग जो इमाम का हकीकी इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ जबान से नहीं दिल से भी इंतजार करें, अमल से भी। इंतजार क्या है? अब मैं आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा कि भाई मैं बहुत मुअज्जिज तरीन हस्ती अजीम शान हस्ती जिस पे जान फिदा माल औलाद फिदा, वो मेरे घर में मेहमान होने वाले, वो आपने देखा है अरे इतनी बड़ी आपने ये झाड़ू तक नहीं लगाया है, उधर गंदगी पड़ी हुई है, आपने कोई सही से चादर नहीं बिछाई है, आप इंतजार तो झूठा है अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी हस्ती, तो अगर हम मौला का इंतजार कर रहे हैं तो मौला हमारे चेहरों को नहीं देखेंगे, हम मौला हमारे दिलों को देखेंगे कि हमने दिलों से निजासतों को निकालना है और खुद को भी अपनी औलाद को भी काबिल बनाना है कि वो मौला इमाम जमाना के असहाब में शामिल हो जाए। ये बहुत बड़ी दुआ है, पूरी दुनिया की अब इस्लाह के लिए दुआ मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से जंगों के खात्मे की दुआ मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम फैल रहा है। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल अज्जिल फरजहुम, कि इमाम खुसूसन जुमे के दिन 100 मरतबा ये दुआ पढ़ना, सलवात पढ़ना, ये कूजे में बंद है, पूरा दरिया बंद है, सारी नेकियां इसमें आ गई और सारी जो खबासतें हैं उनसे पनाह हम मांग रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आज उससे ज्यादा जल्दी जा लेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिर
और
मुख्तलिफ से दुआ। खुदा
जी
हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया, खुदा।